चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद, फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है तो आएँ कुरान सीखें, हमारे प्रोग्राम का नाम है। बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हमारे इस प्रोग्राम में हमारे पास होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए पढ़ें कुरान।
चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान।
तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में सूरह कलम सीख रहे थे और सूरह कलम की 48 आयात हम सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम मज़ीद एक आयत की तिलावत करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप तैयार हैं? तो पहले मैं आपको ये आयत पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद मिलकर हम इस आयत की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौला अन तदारकहु निअमतुम मिन रब्बिही लनुबिदा बिल अरा व हुवा मज़मूम। प्यारे बच्चों, आप में से कोई मुझे मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल का कायदा सुनाएगा? मद्दे मुत्तसिल कब होता है और मद्दे मुनफसिल कब होता है? चलें आप बताएं।
फिर मद्दा के बाद हमला ऐसे करने में होता है मुत्तसिल होगा,
ठीक है,
और मतलब मुनफसिल। और फिर मद्दा के बाद हमला दूसरे करने में होता है मुनफसिल होगा,
ठीक है। हरूफ मद्दा हैं और उनके बाद हमज़ा आ रहा है, तो इसकी दो सिचुएशंस हैं। कितनी?
दो।
हमज़ा उसके बाद उसी कलीमे में होगा या फिर अगले कलीमे में होगा, ठीक है। हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलीमे में है तो वहाँ क्या होगा?
मद्दे मुत्तसिल।
मुत्तसिल नहीं, मद्दे मुत्तसिल। क्या होगा?
मद्दे मुत्तसिल।
और अगर हमज़ा अगले कलीमे में है यानी दूसरे कलीमे में आ रहा है तो वहाँ मद्दे मुनफसिल होगा। क्या होगा?
मद्दे मुत्तसिल,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, अलिफ से पहले ज़बर हो तो क्या होता है? अलिफ मद्दा होता है, ठीक है। तो यहाँ हर्फ़े मद्दा है और इसके बाद अगले कलीमे में हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा?
मद्दे मुनफसिल।
मद्दे मुनफसिल होगा। और यहाँ पर आप देखें, अलिफ से पहले ज़बर है तो यहाँ क्या होगा?
मद्दे मुनफसिल।
अलिफ से पहले ज़बर है तो
अलिफ मद्दा।
अलिफ मद्दा।
अलिफ से पहले ज़बर है तो क्या होगा?
अलिफ मद्दा।
अलिफ मद्दा होगा। फिर यहाँ देखें, इसके बाद इसी कलीमे में हमज़ा आ रहा है, हमज़ा यहाँ पर इसी कलीमे में है तो यहाँ क्या होगा?
मद्दे मुत्तसिल।
मद्दे मुत्तसिल होगा, ठीक है। यहाँ हमज़ा दूसरे कलीमे में था तो मद्दे मुनफसिल, और यहाँ हमज़ा इसी कलीमे में है तो मद्दे
मद्दे मुत्तसिल।
हमजा इसी कलीमे में है तो मद्दे मुत्तसिल, और हमजा अगर अगले कलीमे में आ रहा है तो मद्दे
मुनफसिल।
मुनफसिल, ठीक है। और अब आप ये बताएं कि मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को खींचेंगे कितना? चलें साइम भाई बताएं।
एक दो या तीन अलिफ के
मुद्दे, एक दो या तीन अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और इनका ये जवाब बिल्कुल गलत है। कौन बताएगा सही जवाब? कितना खींचेंगे?
दो से ढाई अलिफ तक।
दो से ढाई अलिफ तक खींचेंगे। आप बताएं कितना खींचेंगे?
दो से ढाई
अलिफ तक। आप बताएं? नहीं मालूम।
दो ढाई या तीन अलिफ।
दो ढाई या तीन अलिफ, और वो कह रहे हैं दो से ढाई अलिफ। किसका जवाब सही है?
दो।
आपका ये वाला जवाब भी गलत है। दो से ढाई अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को हम दो या फिर
ढाई अलिफ के
बराबर खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पर आप चाहें तो दो अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें, और चाहें तो ढाई अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ें। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें, नून साकिन है। नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं, किसी को मालूम है? आप बताएं।
चार।
कितने कायदे हैं?
चार।
चलें एक एक करके बता दें, एक कायदा बताएं नून साकिन और तनवीन का। नहीं मालूम कोई कायदा? आप बताएं।
इजहार।
इजहार।
इकफा।
इकफा। और
इदगाम।
इदगाम। इनको मालूम नहीं है। साइम भाई दूसरों को क्या बता दें?
इकलाब।
इकलाब, ठीक है। इजहार, इकफा, इदगाम और الاعراب. یہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں نون ساکن کے بعد حروف اکفا میں سے تا آ رہا ہے, یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟
اکفا
کا قاعدہ ہوگا. یہاں دیکھیں تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے, یہاں کون سا ادغام کا قاعدہ ہوگا؟ یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے, یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟
ادغام.
ادغام کا قاعدہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو نون ساکن اور تنوین کے یہاں دو قاعدے موجود ہیں, ٹھیک ہے. قاعدے بھی سن لیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اکفا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟
اکفا.
حروف اکفا 15 ہیں, ان میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں اکفا ہوتا ہے, جیسا کہ یہاں پر تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. یہاں پر دیکھ لیں, تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں بھی ادغام ہے, اور یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے, یہاں پر بھی ادغام ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ اکفا میں ہم گنا کرتے ہیں یا ادغام میں گنا کرتے ہیں, کس میں گنا کرتے ہیں؟ آپ بتائیں.
دونوں میں ہی کرتے ہیں.
دونوں میں ہی کرتے ہیں. آپ بتائیں.
دونوں میں کرتے ہیں, بس را اور لام میں نہیں کرتے.
دونوں میں کرتے ہیں, بس را اور لام میں نہیں کرتے. صحیح بتایا انہوں نے, ٹھیک ہے. اکفا ہے, اس میں ہمیشہ گنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جہاں بھی اکفا ہوگا وہاں پر ہم گنا
کریں گے.
اور ادغام میں دو صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟
دو
صورتیں ہیں. اب حروف یرملون جو ہیں وہ 6 ہیں, ان میں سے اگر را اور لام آ جائے تو وہاں ہم گنا
نہیں
کریں گے, اور باقی 4 حروف آ جائیں تو وہاں پر کریں گے, ٹھیک ہے. حروف یرملون کوئی سنائے گا؟
جی
میں سناؤں.
چلیں سائیں بھائی آپ بتائیں.
یا
یا
را
را
میم,
ٹھیک ہے.
لام واو نون,
ٹھیک ہے. تو یہ 6 حروف یرملون ہیں, ان میں سے اگر لام آ جائے یا را آ جائے, ٹھیک ہے, نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام آ جائیں تو وہاں پر ہم گننا
نہیں کریں گے,
باقی 4 حروف میں گننا
کریں گے.
اور اکفا میں ہم گننا
کریں گے,
ٹھیک ہے. اکفا میں ہم ہر جگہ گننا کریں گے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی نہیں ہے کہ اس حرف میں گننا ہوگا یا اس حرف میں گننا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. اکفا حروف اکفا 15 ہے, ان میں سے ہر حرف میں گننا ہوگا. لیکن جب ادغام ہوگا تو وہاں پر ہم دیکھیں گے را اور لام ہیں یا نہیں ہے. را اور لام ہوں گے تو وہاں گننا
نہیں ہوگا,
باقی 4 حروف میں گننا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد یہاں دیکھیں را پر زبر ہے, یہاں پر بھی را پر زبر ہے, تو را کو کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. یہاں بھی را پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, یہاں با ہے اور با پر تشدید ہے. با جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے, کن میں سے ہے؟
کلکلہ.
آپ لوگوں نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کوئی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ چلیں بتائیں. نہیں, چلیں میں پوچھ لیتا ہوں سوال آپ سے, ٹھیک ہے. با جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے, اور جب حروف کلکلہ مشدد ہوتے ہیں تو انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بتائیں.
حروف کلکلہ کو
سوچ میں پڑ گئے. چلیں آپ بتائیں.
جماؤں کے ساتھ
ادا کرتے ہیں. صحیح بتا رہے ہیں یہ؟ یہ کہہ رہے ہیں جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل ٹھیک ہے. جہاں بھی حروف کلکلہ مشدد ہوں گے یعنی ان پر تجدید آ جائے تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال. بہت سارے بچے اس کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں, اس میں سیٹی کی آواز نکالتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سیٹی کی آواز
چاہیے.
آپ نے اس کا خصوصی خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر بھی زال ہے, تو یہاں پر بھی سیٹی کی آواز
نہیں
آئے گی, ٹھیک ہے. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. لولا ان تدارکہ اچھا یہاں مد منفصل ہے تو اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچیں گے, باقی حروف مدہ کو اور کھڑی حرکات کو 1 الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. لولا ان تدارکہ لولا ان تدارکہ
لولا ان تدارکہ
لولا ان تدارکہ
لولا ان تدارکہ
نعمۃ من ربہ
نعمۃ من ربہ.
اچھا یہاں عین ساکن میں جھٹکا نہیں دینا, ٹھیک ہے. نعمتم من ربہ
نعمتم من ربہ
لولا ان تدارکہ نعمتم من ربہ
لولا ان تدارکہ نعمتم من ربہ.
آیت کا اتنا حصہ کوئی سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں سائم بھائی.
لولا أن تداركه نعمة من ربه.
कोई गलती बताएगा इनकी, बताएं.
इन्हें मत पूरी नहीं है.
मत पूरी नहीं की. और कोई गलती?
आइन में झटका देने
था. आइन में झटका दिया था. नहीं, आइन में झटका तो नहीं दिया था. इनकी गलती ये है कि इन्होंने मद्दे मुनफसिल को पूरा नहीं किया और रा को भी बारीक पढ़ा. ठीक है, रा को पुर पढ़ना था, आपने रा को बारीक पढ़ा है तो इसे पुर पढ़ना है. ठीक है, दूसरी गलती आपने ये की थी कि आपने इसको पढ़ा था नेमतुन, ने ये गलत हो जाएगा. ठीक है ना, मजहूल नहीं पढ़ना. नेमतुन नून के नीचे जेर है. ठीक है, नेमतुन नहीं, नेमतुम मिर रब्बी. ठीक है, अगला हिस्सा पढ़ते हैं.
لَنُبِذَ
بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ.
لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ.
ठीक है, अब ये हिस्सा कौन सुनाएगा? चलें आप पढ़ें.
لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ.
कोई गलती निकालेगा इनकी? चलो,
इनको सही से नहीं पढ़ा
है. सही नहीं पढ़ा. और कोई गलती?
ज़ाल को ज़ा के वाले गलत.
नहीं, ऐसा तो नहीं है. इन्होंने जाल में कल कलकला की तरह आपने अदायगी की, ये दूसरे वाले दाल की. मध आपने इस तरह पढ़ा, मध मूम, तो इस तरह नहीं. ठीक है, आवाज़ को मखरज में हिलाना नहीं है. मध मूम इस तरह पढ़ेंगे. ठीक है, अच्छी कोशिश है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब पूरी आयत एक साथ पढ़ते हैं. ठीक है, लौला अन तदारकहु निअमतुम मिर रब्बिहि लनुबिद बिल अराई व हुवा मज़मूम. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم.
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم.
अभी भी कुछ गलतियां हो रही हैं, चलें सुन लेते हैं. आप पढ़ें.
لولا أن تداركه نعمة من ربه من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم.
अच्छा, इन्होंने एक चीज़ की कि इन्होंने मिर रब्बी पर वक्फ कर दिया और उसके बाद फिर पीछे से मिला कर पढ़ा. इसे क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? साइम भाई बताएं.
वक्फ.
इसे वक्फ कहते हैं. ठीक है, वक्फ तो इन्होंने कर दिया मिर रब्बी, फिर इसके बाद इन्होंने पीछे से मिला कर पढ़ा. इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इयादा. क्या कहते हैं?
इयादा.
ये हम तब करते हैं कि आप कोई बड़ी आयत पढ़ रहे हैं और उसके बीच में आप कहीं पर वक्फ कर देते हैं, तो फिर तरीका ये है इसको पढ़ने का कि आप पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे. ठीक है, जैसा कि इनकी सांस यहाँ टूट गई थी तो इन्होंने यहाँ पर वक्फ कर दिया और इसके बाद इन्होंने पीछे से मिलाकर पढ़ा. ठीक है ना, डायरेक्ट आगे से नहीं पढ़ा सांस तोड़कर. बहुत सारे बच्चे इस तरह करते हैं, डायरेक्ट सांस तोड़कर आगे से पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो इसमें बेहतर क्या है कि आप पीछे से मिलाकर पढ़ें और इस तरह पढ़ने को इयादा कहते हैं. क्या कहते हैं?
इयादा.
और इनकी कोई गलती बताएगा? कोई गलती की इन्होंने? आपने ये गलती की है कि आप जहाँ पर गुन्ना कर रहा था इसके अलावा भी नाक से अदायगी कर रहे थे. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना. जहाँ गुन्ना हो रहा है वहीं नाक में आवाज़ ले जाएं, इसके अलावा दीगर जगहों पर नाक में आवाज़ ले जाकर अदायगी नहीं करनी है. ठीक है, तो जो गलतियाँ आप सबकी हुई हैं आपने प्रैक्टिस करनी है, तकरार के साथ पढ़ते रहें, इंशाल्लाह ये गलतियाँ ठीक हो जाएंगी. ठीक है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ. अब मैं अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए YouTube किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं. आप वहां जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कुरान में जिक्र है.
चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान.
प्यारे बच्चों, एक मरतबा अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम. कौन? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बार अपने लश्कर के साथ जो है वो कहीं जा रहे थे, एक वादी से आपका गुजर हुआ. वादी समझते हैं क्या होती है?
जी.
क्या होती है बताएं?
दो पहाड़ों के दरमियान की जगह.
दो पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है, जो एरिया होता है, उसे क्या कहते हैं?
वादी.
वादी कहते हैं. तो आपका गुजर एक वादी से हुआ जहाँ बहुत ज्यादा जो है वो चींटियाँ थी. क्या थी?
चींटियाँ.
चींटियाँ थी. ठीक है, तो लश्कर को देखकर چونٹیوں کی ملکہ, چونٹیوں کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے, مطلب ان کی جو رانی ہوتی ہے, ان کی سردارنی ہوتی ہے, تو چونٹیوں کی ملکہ نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ تم سب اپنے بلوں میں چلی جاؤ. کہاں چلی جاؤ؟
بلوں میں.
بل کیا ہوتا ہے؟
گھر, جو گھر بنائے ہوتے ہیں
چونٹیوں کا, جو گھر ہوتا ہے اس کو بل بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان سب کو کہا کہ تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے. دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑی بات جاننے کو ملی کہ چونٹی کی ملکہ بھی یہ بات جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عدل اور انصاف کرنے والے ہیں, کسی پر بھی آپ ظلم نہیں کرتے. اگر آپ کے لشکر سے چونٹیاں کچلی گئیں تو وہ بے خبری سے کچلی جائیں گی, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہاں سے گزر رہے ہوں تو انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں چونٹیاں ہیں, ورنہ جان بوجھ کر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی ایسا کام نہیں کریں گے. تو چونٹی بھی یہ جانتی تھی, اس نے کیا کہا کہ کہیں بے خبری میں وہ کچل نہ دیں, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جان بوجھ کر کبھی وہ ایسا
نہیں کریں گے.
تو چونٹی کی یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لی. کہاں سے سن لی؟
3 میل دوری سے.
اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں سے 3 میل جو ہے وہ دور تھے. تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ مسکرانے لگے اور اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ چونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں. پھر جب چونٹیاں اپنے گھروں میں یعنی اپنے بلوں میں داخل ہو گئیں تو آپ علیہ السلام کا لشکر وہاں سے گزرا. پیارے بچوں, اس واقعے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ کنز العرفان, یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا, اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں. تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا, اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو, اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں. پیارے بچوں, اس واقعے سے ہمیں بہت ساری پیاری پیاری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کو کیا سیکھنے کو ملا, کوئی بتائے گا؟ چلے سائم بھائی,
ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے.
ہمیں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جانوروں کو ستانا, جانوروں کو تکلیف دینا, انہیں تنگ کرنا یہ بہت بری بات ہے, اور اللہ پاک کے نیک بندے جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں سے دور رہتے ہیں. تو ہمیں کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ پاک کے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام کیسے ہوتے تھے کہ وہ جانوروں پر, یہاں تک کہ چھوٹے سے کیڑے مکوڑوں پر بھی ظلم کو گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن ہمارے بعض بچے کیسے ہوتے ہیں, جانوروں کو, بلیوں کو, گلیوں میں جو کتے گھوم رہے ہوتے ہیں انہیں تنگ کرتے ہیں, انہیں ستاتے ہیں. تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے؟
نہیں.
میں آپ کو امیر اہل سنت کا اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ امیر اہل سنت واش بیسن کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر رک گئے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جا کر امیر اہل سنت نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ چونٹیاں گزر رہی ہیں. کون گزر رہی تھیں؟
چونٹیاں.
چونٹیاں گزر رہی تھیں وہاں پر. تو امیر اہل سنت نے جو ہے وہ کچھ دیر انتظار کیا, اور پھر جب چونٹیاں جو ہے وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو گئیں, پھر جو ہے وہ آپ نے واش بیسن یوز کیا اور اپنے ہاتھ دھونے تھے یا جو بھی کام کرنا تھا آپ نے پھر وہ کیا. لیکن پہلے آپ چونٹیوں کے لیے بھی انتظار کرتے رہے. دیکھیں اللہ پاک کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں کہ چونٹیوں کے لیے بھی جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ چونٹیوں کو بھی میری وجہ سے کبھی تکلیف نہ ہو. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کس طرح کے کام کرتے ہیں جانوروں کو, بلکہ ہم تو انسانوں کو بھی تکلیف دینے میں جو ہے وہ ذرا بس سوچتے نہیں ہیں. ویسے ہی بچوں کو تنگ کرتے رہنا اسکول میں, مدرسوں میں, اپنے فرینڈس کو تنگ کرتے رہتے ہیں نا. تو ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے, کسی کو ستانا نہیں چاہیے. اسی طرح اس سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہم السلام, اسی طرح اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, ان کی سننے کی, دیکھنے کی طاقت جو ہوتی ہے, اسی طرح ان کے بولنے کی طاقت بھی عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں جو عام انسان کو نظر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا, وہ ایسی باتیں بھی سن سکتے ہیں جو عام انسانوں کو سنائی نہیں دیتی. اسی طرح وہ ایسی باتیں بول سکتے ہیں جو دور دور تک لوگ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, نارمل آپ بات کوئی کریں گے تو کہاں تک آواز جائے گی, لیکن اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی آوازیں دور دور تک لوگ وہ چاہیں تو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور بات نوٹ کرنے کی کیا ہے, آپ نے کسی کبھی گائے کی آواز سنی ہے, بکری کی آواز سنی ہے, چونٹی کی آواز کسی نے سنی ہے؟ چونٹی کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی. کیوں؟ देखें ना, सुलेमान अली सलाम का कमाल क्या है कि आपने जो है वो गाय या बकरी की आवाज़ नहीं सुनी, बल्कि चींटी की आवाज़, जिसके आम लोग आवाज़ सुन भी नहीं सकते, आपने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी नहीं बल्कि उसकी बात को समझ भी लिया, वो भी 3 मील की दूरी से। ये हज़रत सुलेमान अली सलाम की शान है। तो आप खुद सोचें कि सुलेमान अली सलाम का इतना बड़ा मकाम है कि वो चींटी की आवाज़ को सुन भी सकते हैं, उसे समझ भी सकते हैं। तो जो सुलेमान अली सलाम के भी सरदार हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम नबियों के सरदार हैं, उनकी समाअत का यानी उनके सुनने की ताकत का आलम क्या होगा। तो अल्लाह पाक के प्यारे अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम और नेक बंदे दूर से भी जो है वो हमारी आवाज़ों को सुन सकते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने, इन पर इनको याद रखने, इन्हें दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन।
इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है
चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान।
तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल, और आज एक तरफ है हमारे मोहम्मद शहबाज भाई और दूसरी तरफ है साइम रज़ा भाई। इन दोनों के दरमियान कॉम्पिटिशन होगा, मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले कॉम्पिटिशन के रूल सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई सवाल हुआ और आप उस सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने?
10 पॉइंट्स।
लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो भी आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शंस लेकर अगर सही जवाब देंगे तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे?
5।
लेकिन गलत जवाब दिया तो
0,
कोई पॉइंट
नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला सवाल हमारे शहबाज भाई से है। शहबाज भाई, आप बताएं, कुरान पाक की एक सूरत का नाम सूरह नसर है, नसर का मतलब क्या है?
मदद।
ये कह रहे हैं नसर का मतलब है मदद, और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे शहबाज भाई?
10 पॉइंट्स।
अब अगला सवाल है हमारे साइम रजा भाई से। आप कोशिश कीजिएगा कि इसका जवाब मालूम हो, वरना पॉइंट कट जाएंगे, ठीक है। साइम भाई बताएं, बड़ा ही आसान सवाल है, अलहमद में कितने हरूफ हैं?
5।
ये कह रहे हैं अलहमद में 5 हरूफ हैं, और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इन्हें भी मिले हैं 10 पॉइंट्स, और अब तक दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अगला सवाल शहबाज भाई से। शहबाज भाई बताएं, सूरह वाकया कुरान पाक के किस पारे में है?
29वें।
ये कह रहे हैं सूरह वाकया 29वें पारे में है, और इनका ये जवाब बिल्कुल
गलत है।
गलत है, सूरह वाकया 27वें पारे में है। तो इस सवाल में शहबाज भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, इसीलिए कहता हूँ शहबाज भाई थोड़ा सोच लिया करें। अगला सवाल है साइम भाई से। साइम भाई बताइए, कुरान पाक तकरीबन कितने अरसे में नाजिल हुआ? अंदाज़ा बताने, तकरीबन कितने अरसे में नाजिल हुआ? ऑप्शन दो इसमें भी, 20 साल के अरसे में, 23 साल के अरसे में, या फिर 25 साल के अरसे में?
23।
ये कह रहे हैं कि कुरान पाक तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे?
5 पॉइंट्स
मिलेंगे। अब अगला सवाल हमारे शहबाज भाई से है। शहबाज भाई, कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियों के बराबर सवाब मिलता है?
10।
ये कह रहे हैं कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियों का सवाब मिलता है, इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे शहबाज भाई को। अब अगला सवाल हमारे साइम भाई से है। साइम भाई बताएं, कुरान पाक का आखिरी सजदा किस सूरत में है?
ऑप्शन।
ऑप्शन वैसे बड़ा आसान जवाब है इसका, सूरह अलक, सूरह कद्र, या फिर सूरह फील?
सूरह अलक।
ये कह रहे हैं कुरान पाक का आखिरी सजदा सूरह अलक में है, और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस सवाल में साइम भाई को मिलेंगे 5 पॉइंट्स, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस लिए हैं, लेकिन जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। और अब अगला सवाल है हमारे शहबाज भाई से। शहबाज भाई बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किस पारे में आया है? ऑप्शंस दूं, 28वें पारे में, 29वें पारे में, या फिर 30वें पारे में?
29वें पारे।
ये कह रहे हैं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद 29वें पारे में आया है, और इनका ये जवाब बिल्कुल
गलत
है, 28वें पारे में आया है। तो इस सवाल में शहबाज भाई को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल है हमारे साइम भाई से। साइम भाई बताएं, असहाबे कहफ की तादाद कितनी है?
ऑप्शन।
ऑप्शंस 6, 7 या फिर 8?
7।
साइम भाई कह रहे हैं कि 7 है उनकी तादाद, और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पॉइंट्स मिलेंगे?
5 पॉइंट्स
मिलेंगे हमारे साइम भाई को, क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस लिए हैं लेकिन जवाब दुरुस्त दे दिया है। ठीक है, अब अगला सवाल और आखिरी सवाल है हमारे शहबाज भाई से। आप बताएं, उम्मुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है?
सूरह फातिहा।
सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहते हैं। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी के साथ इनका टोटल हो चुका है 30 पॉइंट्स और हमारे साइम भाई ने ले लिए हैं पहले ही से 25 पॉइंट्स। अगर 5 पॉइंट्स साइम भाई मजीद लेते हैं तो टाई हो जाएगा और अगर 10 पॉइंट्स लेते हैं तो जीत जाएंगे और अगर गलत जवाब दिया तो
नहीं जीतेंगे,
नहीं हार जाएंगे। ठीक है, आखिरी सवाल है साइम भाई, बताएं कौल अल मला उसे कुरान पाक का कौन सा पारा स्टार्ट होता है?
ऑप्शन
ऑप्शंस, टाई हो जाएगा, वैसे ही जवाब दे दो।
पता है मगर गलत ना हो जाए।
गलत नहीं देना, ठीक है। 11वां, 10वां या फिर 9वां?
9वां।
ये कह रहे हैं कौल अल मला उसे 9वां पारा शुरू होता है और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पॉइंट्स मिलेंगे 5 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे साइम भाई को और इसी के साथ इनका भी टोटल हो चुका है 30 पॉइंट्स। बराबर हो चुका है। कौन विनर है आज का फिर हमारा?
दोनों
आज के हमारे विनर है माशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात और मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है।